जमानों की उमंग बाब नंबर 38। जरा आराम करो। मिशनरी सफर से वापस आकर रसूल येसु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। मुरकिस 30:6-32। शागिर्द वापस आए और सब कुछ उससे बयान किया। उन्होंने उसके सामने अपने तमाम अच्छे बुरे तजर्बात रखे, अपनी खिदमत का फल जो उन्होंने देखा उस पर खुशी मनाई, और जहां उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा वहां गम का इजहार किया। उन्होंने अपनी कमजोरियां और खताएं यसु के कदमों रख दी। इंजील की खुशखबरी फैलाने में उनसे कुछ गलतियां भी सरजद हुईं जिन्हें कबूल करते हुए यसु से बयान की, और जब उन्होंने अपनी खताएं कमजोरियां और कामयाबियां उसके कदमों में रखीं तो उसने महसूस किया कि उन्हें अभी मजीद तरबियत और हिदायत की जरूरत है। उसने ये भी देखा कि वो खिदमत करते करते काफी थक गए हैं, मांदगी ने उन्हें दबा लिया है, इसलिए उसने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें आराम की जरूरत है। मगर यहां इतने लोग आते जाते थे कि उन्हें खाने पीने और आराम करने का भी वक्त न मिलता था। मुरकिस 31:6-32।
क्योंकि कलाम सुनने और शिफा लेने के लिए भेड़ येसु को घेरे रहती थी। बेशतर लोग सिर्फ इसलिए उसके करीबतर होना चाहते थे क्योंकि उनके ईमान के मुताबिक वो हर तरह की बरकात का चश्मा है, और जो उससे शिफा पा चुके थे वो उससे अलग नहीं होते थे क्योंकि वो उसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम कर चुके थे, और जो फरीसियों के डर से उसे खुदा का बेटा तस्लीम करने की जुरत नहीं करते थे उन्होंने रूहुल कुदस के नुजूल के वक्त उसके मुंजी होने का इकरार किया। मगर यसु ने अब चाहा कि खुद शागिर्दों के साथ कुछ वक्त तन्हाई में गुजारे। उसे उनसे बहुत कुछ कहना था क्योंकि काम के दौरान उन्हें कई एक जगह पर मुखालफत भी सामना करना पड़ा। यसु के साथ होते हुए बहुत सी बातों के बारे वो उससे मशवरा ले लिया करते थे, लेकिन जब उन्हें उससे दूर रहकर अकेले काम करना पड़ा तो कई मसाइब और मसाइल के बारे उन्हें पता नहीं चलता था कि उनके साथ कैसे निपटा जाए। इन मसाइल और मसाइब के बावजूद उनके काम के नताइज निहायत ही उम्मीद अफजा है। इससे उनके हौसले बुलंद हुए क्योंकि मसीह खुदावंद ने उन्हें अपनी रूह देकर रवाना किया था, लिहाजा उसमें ईमान रखते हुए उन्होंने बहुत से मौजजात किए। मगर अब उन्हें जिंदगी की रोटी खाने की जरूरत थी, यानी उन्हें अलग यस्सू के कदमों में बैठकर मुस्तकबिल के काम के लिए वाज़े हिदायत पाना थी। उसने उनसे कहा, तुम अब अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो। जो भी उसकी खिदमत करते हैं उनके लिए यस्सू निहायत ही मेहरबान और शफीक बाप है। वो उन्हें सुखाना चाहता था कि खुदावंद कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। शागिर्द अवाम की बदलोजान खिदमत कर रहे थे जिससे उन्हें जहनी और जिस्मानी मांदगी का सामना था, इसलिए दोबारा ताजगी हासिल करने के लिए उन्हें आराम करना लाजिम था। शागिर्दों ने अपनी खिदमत के नतीजा में कामयाबी देख ली थी। वो इस जफरियाबी का सहरा अपने सर लेने और रूहानी गुरूर के पालने पोसने के अलावा वो इब्लीस की आजमाइश में फंसने के खतरा में थे। उनके सामने बहुत बड़ी खिदमत थी और उन्हें सबसे पहले ये सीखने की जरूरत थी कि उनकी कुव्वत सिर्फ खुदावन में ही पाई जाती है और वो बजाते खुद कुछ भी नहीं। सीना के बयाबान में जनाब मूसा की तरह, यहूदिया की पहाड़ियों में बुजुर्ग दाऊद की तरह, या किरियत के नाला पर खुदा के बंदा इलिया की तरह शागिर्दों को अपने काम को तर्क करके कुछ देर के लिए फितरत और खुदावंद की हुजूरी और कुर्बत में आना और अपने दिलों को भी जांचना जरूरी था। शागिर्दों की अदम मौजूदगी में जब वो तबलीगी दौरे पर गए हुए थे यस्सु मसीह ने कई और शहरों, कस्बों और देहातों में खुदा की बादशाही की मुनादी की, और ये उस वक्त की बात है जब यस्सु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शहादत की खबर सुनी। इससे उसका अपना अंजाम सामने आ गया क्योंकि उसके कदम भी इसी राह पर गामजन थे जिस पर घटाएं छा रही थीं। शरा के मुअल्लिम और काहिन उसकी हर कदम पर जासूसी में सरगर्म थे और
उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कोई दकीका फरोगजाश नहीं कर रहे थे। रसूलों की मनादी का चर्चा तमाम गलील में फैल गया। हेरोडीस को भी उसकी खबर हो गई, चुनाचे येसु के काम और खिदमत पर गौर करते हुए कहने लगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है। लिहाजा हेरोदीस ने येसु को देखने की तमन्ना जाहिर की।
हेरोडीस को मुसलसल ये खतरा लाहक था कि कहीं ऐसा ना हो कि दरपर्दा इनकलाब आ जाए और उसे तख्त से दस्तबरदार होना पड़े। यूं यहूदी रोमियों का जू उतार फेंकी। बेइत्मीनानी और बगावत की रूह हर जगह पाई जाती थी। इसका एक बड़ा सबूत ये था कि येसु गलील में अपनी अवामी खिदमत जारी ना रख सका। उसके दुखों की घड़ियां करीब आ रही थीं। इसलिए उसने उपस्तमा इंतशार और भीड़ से अलग रहना चाहा। यूहन्ना के शागिर्दों ने सोगवार दिलों के साथ यूहन्ना को दफन किया। तब वो गए और येसु को उसकी खबर दी। मत्ती 12:14।
यूहन्ना के शागिर्द येसु से हसद करते थे क्योंकि उन्होंने देखा कि येसु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द बना रहा है और उनके आका की कद्र कम हो रही है। इसलिए वो फरीसियों के साथ मिलकर येसु पर उस वक्त इल्जाम लगाने में पेश पेश थे जब वो मत्ती महसूल लेने वाले के घर खाना खा रहा था। चूंकि येसु ने यूहन्ना को आजाद नहीं करवाया था, इसलिए उन्हें उसके इलाही मिशन पर शक था। मगर अब तो उनका आका वफात पा गया था और उन्हें तसल्ली की जरूरत थी। नीज उन्हें अपने मुस्तकबिल के काम के लिए येसु की रहनुमाई दरकार थी। इसलिए वो येसु के पास आए क्योंकि उन्हें भी नजात दहिंदा के साथ रफाकत करने की जरूरत थी। झील के शुमाली किनारे बैत सईदा के करियत एक पर सुकून सेहत अफजा शादात वादी में येसु और शागिर चले गए जहां हरी हरी घास उनको खुशामदीद कह रही थी। ये जगह शहराए आम से दूर थी। यहां ना शहर के हंगामे थे न उनके सकों में कोई मुखिल होने वाला। फितरत के नज़ारे ही उनका आराम थे जो उनकी जहनी कवा को तरोताज़ा करते थे। यहां वो यसु मसीह का कलाम बगैर किसी की मदाखलत के सुन सकते थे। यहां वो फरीसियों और फकीहों की दिल आज़ारी और इल्ज़ामात से भी आज़ाद थे। यहां वो अपने आका की हजूरी में पुर अमन लम्हात गुजार सकते थे। आराम के लम्हात जो खुदावन मसीह और उसके शागिर्दों ने गुजारे उनकी अपनी नफ्स परवरी के लिए थे, न अपनी नाजबरदारी के लिए। जो लम्हात उन्होंने तन्हाई में गुजारे उसमें वो अपनी खुशी और तरब के तालिब ना हुए, बल्कि वहां उन्होंने इकट्ठे मिलकर खुदा के काम के बारे गुफ्तगू की और उन तमाम मुमकिनात का जायजा लिया जिनके बायस काम मजीद मौसर तौर से तरक्की कर सकता था। शागिर्द और उस्ताद तन्हाई में थे जहां वो बराह रास्त एक दूसरे से खुलकर तबादला ख्याल कर सकते थे, जहां येसु को किसी तमसील का सहारा लेने की जरूरत न थी। उसने उनकी गलतियों की इसलाह की और उन्हें लोगों तक पहुंचने का रास्ता तरीका बताया। आपस ने मजीद वजाहत के साथ उन पर इलाही सच्चाई के भेद खोले, इलाही कुव्वत से उनमें काम करने की रूह फूंकी और उन्हें उम्मीद और हौसला अता किया। बेशक येसु मोजजात दिखा सकता था और अपने शागिर्दों को भी मोजजात की कुव्वत और कुदरत अता कर सकता था, जिसकी बदौलत वो मोजजात की कुदरत रखते। मगर उसके बरक्स उसने अपने शागिर्दों को हिदायत की कि वो अलहदगी में जाकर आराम करें। जब उसने ये फरमाया कि फसल तो बहुत है और मजदूर कम, इस पर शागिर्दों के जिम्मे एक काम लगा, यानी फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती 38:9।
खुदावंद ने हर एक शख्स को आपस की अहलियत के मुताबिक कलीसिया की खिदमत सुपुर्द कर रखी है। इफ़सियों 11:4-13। वो नहीं चाहता था कि बास तो खिदमत के बोझ सुपुर्द कर रखी है। इफ़सियों 11:4-13। वो नहीं चाहता था कि बास तो खिदमत के बोझ नीचे दबकर रह जाए जबकि बास के पास कोई जिम्मेदारी ना हो। खुदावंद यसु मसीह ने शागिर्दों से जो दिलजुई का कलाम किया था वही कलाम आज के खादमों के लिए भी है। अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो। वो उन सबको फरमाता है जो थके मांदा है, क्योंकि ये अकलमंदी नहीं कि कोई हर वक्त काम और परेशानी तले दबा रहे। ऐसा करने से इंसान की जहनी जिस्मानी और रूहानी कुवा खस्ता और मांदा पड़ जाती हैं। खुद इनकारी और ईसार की जरूरत तो है, मगर मोहतात रहने की भी जरूरत है, कहीं इबलीस इंसानी कमजोरी का फायदा उठाकर खुदा के काम को बर्बाद ना कर दे। किसी की भी खुदावंद यसु मसीह की तरह मसरूफ जिंदगी ना थी, फिर भी वो अक्सर दुआ के लिए वक्त ढूंढ लेता था। वो तवातुर के साथ अपने बाप से राब्ता रखता। उसके बारे हम यूं पढ़ते हैं, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहीं दुआ की। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने सारी रात गुजारी। मरकुस 35:1, लूका 15:5-16, लूका 12:6।
खुदावंद यीशु मसीह, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर रखी थी, उसने ये मनासत और जरूरी जाना कि कुछ देर के लिए अवामी शाहराहों और उस भीड़ से दूर अलग वीरान जगह चला जाए जो दिन रात उसका पीछा करती रहती थी। ये उसके लिए लाजिम था कि थोड़ी देर के लिए इंसानों से राब्ता मुनकता करके खुदावन से अपने राब्ते बहाल करे, जो बनी नौ इंसान की मुसलसल खिदमत करने से टूटा था। जैसे कि वो हमारी कमजोरियों और जरूरियात में बराबर का शरीक था। इंसान होते हुए उस पर इंसानी कमजोरियों की आजमाइश रहती थी। बदी वजह उसे हर काम के लिए अपने बाप पर इन्हिसार करना पड़ता था। इसलिए वीरान जगहों में जाकर वो खुदा से दुआ के लिए कुव्वत पाता था, ताकि आजमाइशों पर काबू पाए और अपने फराइज को बहसन अंजाम दे सके। इस गुनाह भरी दुनिया में यस्सू को मुसलसल कशमकश और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। खुदावंद खुदा से रफाकत करके वो उन दुखों को उतार फेंकता था जो उसे कुचल रहे थे। यहीं उसे आराम और मुसर्रत नसीब हुई। खुदावंद यस्सू मसीह के जरिए इंसानी आह नाला खुदावंद कादिर मुतलक तक पहुंचता है। जब तक यस्सू इंसानी जामे में था, उसे आल आदम की तरह खुदावंद खुदा के तख्त से उस वक्त तक हर हाजत के लिए दरखास्त करना थी जब तक कि उसकी बशरियत आसमानी कुव्वत के जरिया से उलूहियत में तब्दील न हो जाती। खुदा के साथ मुसलसल राब्ता रखने से उसे खुदावंद से जिंदगी पाना थी, ताकि जिंदगी जो वो खुदा से हासिल करे दुनिया को दे सके। उसका तजुर्बा हमारा तजुर्बा भी हो सकता है। वो फरमाता है, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो। अगर हम उसके कलाम को मानेंगे तो हम उसकी खिदमत के लिए बहुत ही मजबूत और कारामत साबित हो सकेंगे। शागिर्दों ने यस्सू को ढूंढा और उसे अपने बारे सब कुछ बता दिया, जिस पर उसने उनकी हौसला अफजाई की और मजीद हिदायत दी जो उनकी बेहतरी का बायस थीं। अगर आज हम भी वक्त निकालें और अपनी तमाम जरूरियात उसके सामने रखें, तो हम भी हर तरह की मायूसी वे बच जाएंगे, क्योंकि वो हमारी मदद को हमारी दाहिनी तरफ मौजूद होगा। जरूरत इस बात की है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा भरोसा अपने नजात दहिंदा में हो, जिसके बारे लिखा गया है कि वो खुदाए कादिर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। अजीब मुशीर होगा। फरमाता है कि मुझसे हिकमत हासिल करो, और जो उससे मांगते हैं उनको वो बगैर मलामत और फयाजी के साथ अता करता है। यस्सैया 6:9, याकूब 5:1। वो सब जो खुदावंद के जेर तरतीब हैं, उन्हें ऐसी जिंदगी बसर करना है जो दुनियावी जिंदगी से मुताबिकत न रखती हो। वो दुनियावी रस्म व रवाज अपनाएं और ना ही दुनियावी आदात व अतवार। चुनाचे खुदावंद की मर्जी को जांचने के लिए हर एक को खुदा के साथ शख्सी तजुर्बा होना लाजिम है। चाहिए कि वो फर्दन फर्दन हमारे हर एक के दिल से कलाम करे। जब हम दुनिया के हंगामों से दूर खुदावंद के साथ लो लगाते हैं, तो उसकी आवाज हमें बड़ी वाजह तौर पर सुनाई देती है। खुदावंद फरमाता है,
खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूं। जबूर 10:46। हकीकी सुकून खुदावंद खुदा में ही नसीब होता है, और वो सब जो खुदावंद की खिदमत में हैं, उनके लिए इससे मौसर तरबियत क्या हो सकती है। भेड़ की धक्कम पील और शोर शराबे, जिंदगी की उलझनों, अफरा तफरी और मेहनत मुशक्कत से जिस रूह को खुदा की रफाकत की बदौलत ताजगी मयसर आएगी, तो क्या उसे सुकून हासिल ना होगा। ऐसी रफाकत और जिंदगी खस्ता हाल लोगों के लिए खुशबुएं बखेरती जाएगी और उस इलाही कुव्वत का मुजाहिरा करेगी जो इंसानी दिलों तक पहुंचे बगैर न रह सके।